रुहान गुस्से में बेड से उठा और फिर चिल्लाते हुए बोला, मैडम जी, आप अपना फोन लेकर नहीं जा सकती थीं क्या कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? मैं इस फोन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना बोलकर वो फोन को हाथ में लिए बालकनी के अंदर चला गया। जाते वक्त उसने पर्दे लगा दिए ताकि कमरे के अंदर से बालकनी में कुछ भी ना देखा जाए। वहां जाते ही रुहान का चेहरा पल भर में बच्चों जैसा बन गया जब उसने देखा कि अनाही आंखें खोल उसकी तरफ देख रही है, और दर्द के कारण अनाही की आंखें हल्की लाल भी हो गई थी। अनाही उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। रुहान जल्दी से उसके पास गया और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुहान की आंखों से निकलते आंसू अनाही की गर्दन पर गिर रहे थे, जिससे अनाही बेहद बेचैन हो गई थी। उसने रुहान के बाल सहलाते हुए लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, रुहान जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहे हैं आप? कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी चोट लगी है। मैं ठीक हो जाऊंगी। और आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। मुझे लगता है आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। आपको एक ज़बरदस्त लीड वाला रोल मिल सकता है। रुहान ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैडम जी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपके पैर में दर्द हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मुझे आपको धक्का नहीं देना चाहिए था और देखना चाहिए था कि आप नंगे पैर हैं। अनाही ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी आपकी वजह से नहीं हुआ है। जो भी हो रहा है ताई जी की वजह से हो रहा है। अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लग रही है तो उसका गुस्सा आप ताई जी पर निकालना, अपने ऊपर नहीं, ठीक है? इतना बोलकर अनाही धीरे से रुहान से अलग हुई और अगले ही पल उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोली, अब रोना बंद करिए और चलिए, मेरे पैर से कांच निकालिए क्योंकि मुझे नहीं निकल रहा है। रुहान ने कांपते हाथों को अनाही के पैर की तरफ किया। उसने जैसे ही देखा कि अनाही के पैर में कितना ज़्यादा कांच अंदर तक चला गया है, उसका रोना और भी ज़्यादा तेज़ हो गया। उसने अपने जबड़े कस लिए और फिर एक झटके से अनाही के पैर से कांच निकाल दिया। अनाही ने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि उसके मुंह से कोई चीख ना निकले। तो वहीं माधवी अब अपने कमरे में बैठी अफसोस मना रही थी। उसने अपने आप से कहा, काश मैं बालकनी में भी एक कैमरा लगवा देती। उसके बाद मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता उन दोनों की लड़ाई देखना। अब तो मैं उनकी लड़ाई का एक भी सीन मिस नहीं करना चाहती हूँ। माधवी के दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया था कि रुहान और अनाही उसे बुद्धू भी बना सकते हैं। उसे तो लग रहा था कि रुहान वहाँ जाकर भी अनाही से इस बात के लिए लड़ाई कर रहा होगा कि उसके फ़ोन की वजह से रुहान की नींद डिस्टर्ब हो गई। कांच निकालने के बाद रुहान ने अनाही के पैर पर पट्टी बांधी और फिर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आप चलकर नहीं जा सकती हैं। मुझे आपको अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाना है, पर कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है। अनाही ने कुछ सोचा। थोड़ी देर बाद ही उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। उसने रुहान के होठों पर हल्का सा किस करते हुए कहा, तो आप मुझ पर फिर से गुस्सा करिए और मुझे धक्का दीजिए कि निकल जाओ मेरे कमरे से। इसके बाद अनाही ने अपना पूरा प्लान रुहान को सुना दिया, जिसके बाद रुहान फिर से खुश हो गया। अगले ही पल अनाही सोफे से उठने लगी। रुहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे संभाल कर उठाया। वो उसे तब तक संभालते हुए ही लेकर आ रहा था जब तक पर्दा ना आ गया। उसके बाद रुहान ने हल्का सा धक्का देते हुए कहा, मैडम जी, अब मैं आपको अपने कमरे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरे गुस्से की भी एक लिमिट है और आप उस लिमिट को क्रॉस कर चुकी हैं। निकल जाइए मेरे कमरे से। अनाही ने गुस्से में बालकनी का ग्लास डोर पटकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये कमरा मेरा भी है, मैं आपकी बीवी हूँ। क्या आप भूल गए हैं? मैं इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी। ये सुनकर रुहान ने दांत पीसते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे नहीं जाती हैं। और रही बात बीवी की, तो अब आप सिर्फ मेरे नाम की बीवी है। थोड़े दिनों में ही हमारा डाइवोर्स हो जाएगा और उसके बाद आपका मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। इतना बोलकर रुहान ने एक झटके से अनाही को अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे तेज़ी से कमरे से बाहर ले जाने लगा। अनाही भी फुल ऑन एक्टिंग कर रही थी और झटपटाते हुए उसकी बाहों में बोली, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना इस कमरे से बाहर, ये मेरा भी कमरा है। रुहान उसे वैसे ही गोद में उठाकर बाहर लेकर जाने लगा। वो साथ में गुस्से में बोल रहा था, कमरे से क्या, मैं आपको इस घर से ही बाहर निकाल कर रहूंगा। इसके बाद वो उसे घर से भी बाहर ले जाने लगा। निवेदिता उसे देखकर हैरान रह चुकी थी, पर उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि रुहान फुल स्पीड से घर से बाहर निकल रहा था। थोड़ी देर बाद रुहान पार्किंग में पहुंच चुका था। उसने अनाही को पैसेंजर सीट पर बिठाया और फिर वहां खड़े ड्राइवर को देखते हुए बोला, मैडम को आराम से हॉस्पिटल लेकर जाना, उनके पैर में चोट लगी है तो बैंडेज करवानी है। निवेदिता ने हाँ में सिर हिलाया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अनाही को अस्पताल के लिए ले गया। अनाही भी मुस्कुराते हुए रुहान को देख रही थी, जिसके बाद रुहान वापस अंदर आ गया। अंदर आने के बाद अब वो माधवी के कमरे की तरफ जाने लगा, तो वहीं निवेदिता लगभग दौड़ते हुए बाहर की तरफ गई थी ताकि वो अनाही को रोक पाए।
लेकिन अनाही वहां से पहले ही जा चुकी थी, इसलिए निवेदिता का चेहरा निराशा से भर गया। उसने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई है मेरे हंसते खेलते परिवार को? सब कितने अच्छे से रहते थे। अनाही, जो सबसे समझदार थी, अब तो वो भी लड़ाइयां करने लगी हैं। निवेदिता को नहीं पता था कि उसके बेटे बहू कितनी बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं। वो बेचारी तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। वो अंदर जाती है तो उसके फोन पर विहा का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर पल भर के लिए निवेदिता की चिंता दूर हो जाती है और वो खुश होते हुए विहा का कॉल पिकअप कर लेती है, जिसके बाद विहा अपनी पूरी कहानी निवेदिता को सुनाने लगती है और निवेदिता घर वाली चीजें एकदम ही भूल जाती है और बड़े ध्यान से विहा की सारी बातें सुनने लगती है। तो कहीं राविया को अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी। वो अनंत के साथ एक गाड़ी में थी। वो पैसेंजर सीट पर बैठी थी और अनंत गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो बार बार डरते हुए राविया की तरफ देख रहा था ताकि वो उससे कुछ बोल दे, पर राविया बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। रह रहकर उसकी आंखों में बार बार नमी आ रही थी। अनंत ने अपना गला साफ करते हुए कहा, बीवी, अगर अभी थोड़ा बहुत शक है मुझ पर तो प्लीज मुझसे बात करो और अपने शक को दूर करो। सच में मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ना मुझे किसी के लिए लस्ट है और ना ही लव है। जो भी है सब कुछ तुम्हारे लिए है। प्लीज ट्रस्ट मी। राविया ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, इतना कमजोर रिश्ता भी नहीं है हमारा कि मैं आप पर ट्रस्ट ना करूं। लेकिन आपने झूठ बोलकर जुर्म किया है। आपको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अगले ही पल अनंत ने गाड़ी को सड़क के एक साइड लगाते हुए कहा, हाँ तो बोलो बीवी जी, क्या सजा देनी है तुम्हें? मुझे सारी सजा मंजूर है। तुम कहो तो मैं पुलिस स्टेशन भी चल सकता हूँ। बताओ मुझे।
राविया ने कुछ पल सोचा और फिर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे 5 दिन तक हाथ भी नहीं लगाएंगे। ना मुझे किस करेंगे, ना ही मुझे गले लगाएंगे। आपकी यही सजा है। रात भर बाहर रहने का बहुत शौक है ना आपको, तो अब से आप नाइट ड्यूटी भी करेंगे। 5 दिन दिन रात काम करेंगे। जो भी थोड़े दिन पहले मैंने आपको छूट दे रखी थी अपना अच्छा पति समझकर, अब वो सारी दूर हो जाएगी और मैं बैठकर मज़े से आपको देखूंगी कि आप काम करते वक्त कैसे लगते हो। ये सुनकर अनंत ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, बाकी सब कुछ तो ठीक है बीवी, मैं काम कर लूंगा दिन रात, पर तुमसे दूर ये सब तो मत करवाओ प्लीज। तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ मैं?